राधा माधव जय कुंज बिहारे गोपीजन वल्लभा जय गिरिवर धरि जय गिरिवर धरि गोपीजन वल्लभा जय गिरिवर धरि जय गिरिवर धरि यशोदा नंदन जय ब्रज जनरंजन जय ब्रज जनरंजन यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोदर से श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस श्रील भय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन विपिट संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोदर से श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपाद ट्रांसल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरंध्रस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जन्माष्टमी महोत्सव के एक दिन पूर्व संध्याकालीन कृष्ण कथा महोत्सव में सभी का स्वागत है। गोवर्धन इको विलेज के सभी भक्त लोग जो उपस्थित हैं उनके साथ साथ मैं अन्य जो श्रोतागण उपस्थित हैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगा। इस्कॉन डिजायट्री पर ये जो श्रोतागण हैं, इस्कॉन न्यू दिल्ली के कई मंदिरों के भक्त लोग लाइव रिले सुन रहे हैं, इस्कॉन गोवा, इस्कॉन ऋषिकेश, इस्कॉन औरंगाबाद और इस्कॉन ग्रेटर नोएडा। तो सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस संध्याकालीन सत्र में। तो कल कृष्ण जन्म मनाया जाएगा और इस संदर्भ में दशम स्कंद भागवत से मैं कुछ चर्चा करूंगा। प्रथम मुद्दा यह है कि भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के पीछे मूल कारण क्या है। श्री कृष्ण के अवतार के पीछे, अवतरण के पीछे, उपस्थिति के पीछे मूल कारण है कि वो बद्ध जीवों के लिए अपनी कथाओं का विषय वस्तु तैयार करना चाहते हैं। टू लीव बिहाइंड द ट्रेजर ऑफ नेक्टेरियन सब्जेक्ट्स, टू काउंटरैक्ट द फटीग ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। भौतिक जगत में जो बद्ध जीव परेशान भटकता फिरता है उस परेशानी को दूर करने के लिए भगवान अपनी लीलाओं का प्रसारण करते हैं। नवम स्कंद के अंत में आता है, कलौ जनिष्यमानानां दुख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यम व्यतनोत्यशः। तो भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कथाएं इस कलयुग के दुष्कर और माया महाभयंकर परिस्थितियों का एक प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट होता है। दुख शोक तमो नुदम, दुख शोक और तम को नष्ट करे और अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने, अनुग्रहाय भक्तानाम सुपुण्यम व्यतनोत यशः। यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यशस्तीर्थवरे सकृत श्रोतांजलिभिर् उपस्पृश्य धुनुते कर्मवासनाम। तो इन कथाओं को जो यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे अपने कर्णरंध्रों के माध्यम से जो श्रवण करे, यशस्तीर्थवरे असकृत, जहाँ पर कृष्ण कथा के कीर्तन और श्रवण प्रवाहित होती है ऐसा स्थान तीर्थ बन जाता है। और तीर्थ की परिभाषा है जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक पुल के रूप में कार्य करे उसे कहते हैं तीर्थ, जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत को जोड़े। श्रोतांजलिभिरुपस्पृश्य, श्रवणेन्द्र के माध्यम से हम ऐसे कथाओं का श्रवण करते हैं, अपने कर्ण को ऐसे कथाओं के निकट लाते हैं। तब क्या होता है, जब ये कृष्ण कथा हमारे हृदय के भीतर प्रविष्ट होती है, धुनोते नष्ट करता है क्या, कर्म वासनाम, कर्म के फल को भोगने की वासना का ये शमन करता है। स्निग्ध स्मिते क्षितोदारैः वाक्यै विक्रमलीलया नृलोकं रम्ययाम आसम मूर्त्या सर्वांग रम्यया। तो भगवान श्री कृष्ण अपना सुंदर स्वरूप लेकर प्रकट होते हैं, जिसका वर्णन आ रहा है स्निग्ध अर्थात बड़ा कोमल, स्मित ईक्ष मुस्कुराते हुए अपने मुखमंडल को लेकर, स्मित ईक्षित उदारै ही वाक्यै विक्रम लीलया। भगवान श्री कृष्ण अपने बलिष्ठ भुजाओं के माध्यम से कई कई शक्तिशाली असुरों का विध्वंस करते हैं, अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली के ऊपर विशाल गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं। तो विक्रम लीलया इन सब लीलाओं के माध्यम से, उनके मीठी चितवन के दृष्टिपात से और उनके मुखमंडल के मंद मंद मुस्कान से, नृलोकम रम्ययाम आस, इस कलयुग के बद्ध जीवों का चित्त जो कि विविध प्रकार के भौतिक ज्वालाओं से संतप्त रहता है, शनै शनै उस शीतलता के अभिभूत आवृत्त हो जाता है। मूर्तियां सर्वांग रम्यया, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण देह दिव्य अंग से विभूषित है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञम चोभयवंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। तो दशम स्कंद के आरंभ में आगंतुक मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए भूतपूर्व चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित वैराग्य चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से कृष्ण कथा के ये असीमित सागर का प्रवाह सुनते हुए, उनके समक्ष लगभग 3.5 दिन समाप्त हो चुके, चौथा दिन आरंभ होने वाला है और दशम स्कंद लगभग 3रे दिन के अंत में आरंभ होता है, लेकिन महाराज परीक्षित निरंतर अनशन करते हुए अपनी क्षुधा निद्रा इत्यादि को पूरी तरह सहन करते हुए कृष्ण कथा सुनने में तल्लीन हैं, और भगवान श्री कृष्ण के इन लीलाओं को मानो अपने 9 स्कंद के कथाओं के पश्चात तपस्या के फल के रूप में सुनना चाहते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, आपने सूर्यवंश के राजाओं के विषय में विस्तृत वर्णन किया, सोम वंश के इन राजाओं में वर्णन करते हुए आप अभी भगवान श्री कृष्ण तक आए। राज्ञम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम, ऐसे परम अद्भुत चरित्रों को मैं सुनना चाहता हूँ, और विशेष रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं को। अवतीर्ण्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानी विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। तो कहते हैं अवतीर्ण यदोर वंशे, यदुवंश में कई बड़े बड़े राजा महाराजा इत्यादि हुए, लेकिन उनमें भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम षडैश्वर्य पूर्ण हर प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त श्री कृष्ण प्रकट हुए, भूत भावना जो जगत की सृष्टि या उत्पादन करते हैं भावयति, भावना करते हैं भावयति, दूसरा जगत के जीवों का वो पालन करते हैं अर्थात पालयति, और तीसरा जगत के जीवों के हृदय के भीतर प्रेम भी प्रदान करते हैं प्रेमवती। इस प्रकार कृतवान यानी विश्वात्मा, जो हर जीव के हृदय के भीतर उन सभी के उनकी ओर सन्मुख होने की प्रतीक्षा करते हुए धीरज से उनकी हर प्रकार की इच्छा पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं वो विश्वात्मा, तानिनो वद विस्तरात, उनके इस जगत के विस्तृत लीलाओं का वर्णन आप सुनाइए, मैं सुनने के लिए आतुर हूं। निवृत्त तर्षै रूपगीयमाना भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमन विरज्येत बिना पशुघ्नात्। कहते हैं कि ये कृष्ण कथा हर श्रेणी के श्रोताओं के लिए रुचिकर है, आकर्षक है। तीन श्रेणियों का ये वर्णन कर रहे हैं। सर्वप्रथम निवृत्त तर्षेय, जो हर प्रकार के भौतिक इच्छाओं से उठ चुके हैं, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, जो भक्ति के असीम सागर में निरंतर आंदोलित हो रहे हैं, निवृत्त तर्षेय। कृष्ण कथा ऐसे बुद्धिजीवी, शक्तिशाली, आध्यात्म में रचे पचे भक्तों के लिए बड़ा ही आकर्षक है, उनका पोषण है। वो भले ही अपने जीवन के अन्य सभी भोजन, जल इत्यादि का परित्याग कर दें, लेकिन वो एकांती भक्त हैं। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना, अति अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मग्न। तो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भाई अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज को ये श्लोक बड़ा पसंद था। गायन्त आनंद समुद्र मग्न, आनंद के समुद्र में मग्न होकर डोलते हुए ऐसे भक्तगण, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, उनके जीवन में अन्य कोई इच्छा नहीं होती। वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना, क्योंकि उन्होंने अपने आप को शरणागत वत्सल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञानघन, चिदघन, आनंदघन चरण कमलों में अपने आप को सर्वस्व समर्पित कर दिया है। इसीलिए अति अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम, ऐसे अति अद्भुत सुमंगल चरित्र के सागर में वो डूबते रहते हैं। गायंत आनंद समुद्र भगना, इसलिए प्रथम श्रेणी जो कि एकांती भक्त, शुद्ध भक्त, वो कृष्ण कथा के प्रति इस प्रकार आकर्षित होते हैं जैसे भ्रमर किसी सुंदर कमल पुष्प की ओर। दूसरे जो साधक भक्त हैं, भवौषधात, जो इस भव सागर में पीड़ित हैं और इस भव सागर को पार करना चाहते हैं, लांघना चाहते हैं, और उसके लिए साधना भक्ति का अवलंबन करना चाहते हैं, तो भवौषधात उनके लिए ये कृष्ण कथा औषधि के रूप में, कभी मीठी तो कभी कड़वी। तो इसलिए भवौषधात अर्थात भले इन कथाओं के प्रति स्वाभाविक रुचि न हो, लेकिन फिर भी जिस प्रकार कोई चिकित्सक किसी रोगी को माप तोल कर दवा देता है, वैसे ही हम नियमित रूप से प्रतिदिन कृष्ण कथा का अगर श्रवण करेंगे तो भवौषधात, श्रोत्र मनोभिरामात। और जो भौतिकवादी लोग, जो इस जगत के हर प्रकार के भौतिक इच्छाओं से पूर्ण भौतिक विषय वस्तुओं का सेवन करना चाहते हैं, जो इस जगत के हर वस्तु को अपने चर्म चक्षु और कपोल कल्पित धारणा से केवल भोग के दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, ऐसे भौतिकवादी लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भी मनोरंजन का बड़ा साधन बन जाती है। जो कि कृष्ण ने ऐसी ऐसी अद्भुत लीला की जो कि जगत का कोई सामान्य व्यक्ति भी, जो सामान्यतया केवल अखबारों के प्रति या अन्य किसी उपन्यास के प्रति आकर्षण रखता हो, उसके लिए भी बड़े रुचि का विषय है। जगत में लोग राजनीति, धन सत्ता और मैथुन इत्यादि पुरुष स्त्री संबंध और बहुत बड़े बड़े कलह या वॉर इत्यादि के प्रति आकर्षित होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में ये सभी कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए श्रोत्र मनोभिरामात, भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। महाप्रभु सनातन गोस्वामी का कहते हैं कि भजन के मध्य में नवविदा भक्ति श्रेष्ठ है, और ये नवविदा भक्ति के माध्यम से कृष्ण प्रेम और कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। तो इसके बीच जो भगवान श्री कृष्ण का कथा और कीर्तन का संकीर्तन गुणानुवाद, ये जब हम करेंगे निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन, तब ऐसे संकीर्तन से हम प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। भाग्य तो मार कृष्ण कथा सुनिते होए मन, रामानंद पाश जाए कराह श्रवण। महाप्रभु प्रद्युम्न मिश्र कहते हैं कि आपको कृष्ण कथा सुनने की रुचि हुई, मैं आपको कहता हूं कि आप जाओ और रामानंद राय के चरणों में बैठकर कथा सुनने का प्रयास करो। फिर कहते हैं, कृष्ण कथाए रुचि तोमार, बड़ा भाग्यवान, जार कृष्ण कथाए रुचि सही भाग्यवान। जिसके हृदय में कृष्ण कथा को सुनने के प्रति रुचि जागृत हुई है वो बड़ा भाग्यशाली है। और इसलिए महाप्रभु स्वयं रामानंद राय के चरणों में बैठकर कथा श्रवण किए कोवूर में दक्षिण भारत की यात्रा के समय। नमस्कार कोयला राय प्रभु आलिंगो ने, दुई जने कृष्ण कथा को हिरहस्थाने। तो रामानंद राय और महाप्रभु दोनों एकांत स्थान में बैठकर कृष्ण कथा किए। रहस्थाने का तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण कथा सुनाने का और कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए अधिकार प्रधान है। और इसलिए क्योंकि महाप्रभु और रामानंद राय दोनों एक अव्वल स्तर पर कथा का श्रवण कीर्तन करने वाले थे, इसलिए अन्य कोई भी अयोग्य व्यक्ति उस परिवेश में उपस्थित नहीं था। प्रभु कहे आगे कह सुनिते पाए सुखे, अपूर्वामृत नदी बहे तोमार मुखे। महाप्रभु कहते हैं रामानंद राय को कि आपके मुख से जो कृष्ण कथा की वेगवती सरिता प्रवाहित हुई है, इस अमृत धारा में मैं निरंतर मग्न रहना चाहता हूँ। आप इस कृष्ण कथा को समाप्त न करो, रोको मत, इस कथा को आगे बनाए रखो। तो इसलिए कृष्ण भक्ति के लिए सर्वप्रथम न्यूनतम योग्यता है कृष्ण कथा को श्रवण करने की रुचि, और यहाँ पर परीक्षित महाराज इसको भली भांति प्रकट कर रहे हैं। तो हमारे आध्यात्मिक अनुभव के लिए तीन महत्वपूर्ण विषय आवश्यक हैं। हाँ, हम लोग माला लेकर भक्ति के मार्ग में उतर चुके हैं, हम लोग ने संकल्प कर लिया कि हम कृष्ण के लिए समर्पित हैं, जन्माष्टमी का कार्यक्रम भी हम धूमधाम से मनाने के लिए संकल्पबद्ध हो चुके, साधक और दीक्षित होने के पश्चात कई नाम भी प्राप्त कर लिए। लेकिन भक्ति का मूल तत्व है कि आध्यात्मिक अनुभव, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। एंड द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। फर्स्ट, सेल्फलेस सेक्रीफाइस, निस्वार्थ सेवा भाव के साथ बलिदान करने की क्षमता। दूसरा, एक्सेप्शनल एफर्ट। जब तक हम कर्मठ प्रयत्न और निर्व्यलीक निष्कपट रूप से प्रयत्नशील रहने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, तब तक आध्यात्मिक अनुभव संभव नहीं। और तीसरा इज द विलिंगनेस टू टेक रिस्क्स, अर्थात अनिश्चितता के किसी परिस्थिति में छलांग मारने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो बिना बलिदान के, बिना प्रयत्न के और बिना अनिश्चितता के कोहरे अंधकार में निर्भीक होकर चलने और यात्रा करने की जब तक क्षमता या इच्छा न हो, तब तक आध्यात्मिक अनुभव केवल एक बहुत ही स्वप्न मात्र रह जाता है। तो क्या इसे रोकता है हमें? हम कई बार भयभीत होते हैं कि हम अपना प्रयत्न करेंगे तो क्या पराजय तो नहीं होगा, मान हानि तो नहीं होगी, और लोगों के बीच किस प्रकार की भावना या धारणा रहेगी अगर हमने कोई प्रयास किया, कोई रिस्क लिया और वो असफल रहा। तो इसलिए परीक्षित महाराज का ये उदाहरण एक श्रेष्ठ साधक का उदाहरण है। वो तो खैर सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन साधक के दृष्टिकोण से अपने भक्ति में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प रहना महत्वपूर्ण है, और दृढ़ता के मूर्तिमान स्वरूप हैं महाराज परीक्षित। तो दृढ़ता प्रकट कर रहे हैं, और दृढ़ता को अगर बढ़ाना हो तो सर्वप्रथम हमें चाहिए कि हम इस तत्व ज्ञान के प्रति जानकारी प्राप्त करें, फिलॉसफी हो, दूसरा उचित अनुकूल भक्तों का संग हो, वैष्णवों का संग हो और ऐसे संग में हम सेवा करते रहें, और तीसरा कि हम ऐसे वैष्णव संघ में भक्ति के नियमों को भली भांति पालन करें। सो द फिलॉसफी, द पीपल एंड द प्रैक्टिस, ये तीनों बड़ा महत्वपूर्ण है। और जब तक तत्वज्ञान, वैष्णव संघ और उचित प्रकार से इन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे तो हम किसी प्रकार का परिवर्तन अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ बताया गया है, दीज आर द थ्री एक्सटर्नल सपोर्ट, या तीन बाहरी रूप से जो हमको सहायता मिलती है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। और आंतरिक रूप से आगे बढ़ने के लिए क्या सहायता है? रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, उत्साहान निश्चयात धैर्यात। केवल उत्साह हो, धैर्य नहीं, तो हम लंबे समय तक भक्ति नहीं कर सकते। केवल धैर्य हो और उत्साह नहीं तो गाड़ी शुरू ही नहीं होगी, क्योंकि धैर्य ही धैर्य है, उत्साह है ही नहीं। तो इसलिए उत्साह भी चाहिए और धैर्य भी चाहिए, दोनों का समावेश होता है तब जाके सत्व गुण की वृद्धि होती है। तो इसलिए भक्ति के आरंभ में कई बार जो सबसे पहला पड़ाव, फर्स्ट स्टेप इज, अगर कोई हमको कुछ कहता है, माला करो, नियम पालन करो, ये सेवा करो, तो हमारी सर्वप्रथम प्रतिक्रिया होती है, आई वॉन्ट डू इट, मैं नहीं करूंगा। ये एक डिफॉल्ट बद्ध जीव के अहंकारवश प्रतिक्रिया बन जाती, आई वॉन्ट डू इट। फिर कुछ सत्संग और कथा श्रवण करके और फिर भौतिक प्रकृति के दो चार लात खाने के बाद फिर हमारी प्रतिक्रिया कुछ सुधरती है, फिर हम दूसरे स्टेप पर आते हैं, आई कांट डू इट, तैयार हो जाते हैं, आई विल डू इट, मैं करने के लिए तैयार हूं लेकिन मुझसे होगा नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, इच्छा जागृत होती है, आई वॉन्ट टू डू इट, यह है स्टेप 3, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये कार्य, ये सेवा, ये भजन, ये संकल्प में भाग लेना चाहता हूं। फिर चौथा स्टेप ये आता है कि व्यक्ति पूरी तरह उसके विषय में मनन करने लगता है, हाउ डू आई डू इट, मैं कैसे ये करूं, अर्थात काफी आगे बढ़ चुका है। पहले स्टेप पे था आई वोंट डू इट, मैं नहीं करूंगा, अब यहां तक पहुंच गया कि मैं कैसे करूं। अब इसके आगे ऊपर ही बढ़ता चला जाता है, पांचवा स्टेप विचार करता है, चलो भले मेरे अंदर क्षमता कम क्यों ना हो, आई विल ट्राई टू डू इट, मैं प्रयास तो करता हूं। और यह संपूर्ण जन्माष्टमी के कथा में सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा है वो यही है, आई विल ट्राई टू डू इट। और वसुदेव जी अपने संपूर्ण जीवन के चरित्र में इस गुण को सबसे अधिक प्रदर्शित किए, आई विल ट्राई टू डू इट, है कि नहीं? प्रभुपाद जी अपने अमेरिकन शिष्यों को लेके भारत में आए थे और प्रभुपाद जी चाह रहे थे कि भारत में प्रचार बढ़ाए, श्याम सुंदर प्रभु को क्रॉस मैदान प्रोग्राम का इंचार्ज बना दिए, और वो लोग सोच रहे थे हम लोग कैसे ये सब करेंगे, ये सब कैसे संभव हो सकता है, लेकिन उनके अंदर एक ही गुण था, वो सोच रहे थे, प्रभुपाद ने इच्छा की आई विल ट्राई टू डू इट, हम प्रयास करें। तो श्याम सुंदर प्रभु अपने बुक में लिखते हैं, गाड़ी चला रहे थे वो कलबा देवी मार्केट में बंबई के, अब अमेरिकी ड्राइवर और भारत में चला रहे हैं तो सोचो बहुत अधिक साहस चाहिए। अब ड्राइविंग करते करते अचानक गाड़ी ठोकर लगा दिया किसी को और एक आदमी जो है सामने गिर गया, समय पर ब्रेक लगाया लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को लगा और वो नीचे गिर गया, चारों तरफ लोग घेर लिए। अब श्याम सुंदर प्रभु घबरा गए, उनको लगा कि मैंने सुना है कि भारत में अगर रास्ते पर लोगों ने घेर लिया वहीं गाड़ देते हैं, तो अपने हाथ में माला लेके जपने लगे, चारों तरफ से लोग अंदर देखे कौन है, फिर अचानक पब्लिक
उस व्यक्ति के ऊपर टूट पड़ी जो सामने ठोकर खा के नीचे गिरा था और उसकी पिटाई करने लगे। तो श्याम सुंदर प्रभु थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बोले गलती तो मैंने की, पिटाई उसकी क्यों हो रही है? फिर उनको लगा शायद भारत में वहां से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपने को मारेंगे। लेकिन उसकी पिटाई करने के बाद लोग साइड में हट गए, बोले आगे चलो। तो ये बोले, एक व्यक्ति अंग्रेजी बोलता था, उनको पूछ लिया, भाई गलती मैंने की, उसकी पिटाई क्यों की आपने? तो कहते अरे तुम कृष्ण के भक्त का वेश बना के चल रहे हो, उसकी हिम्मत कैसे हुई भक्त को डिस्टर्ब करने का? तो ये सुनकर वो अचरज में पड़ गए कि केवल वैष्णव का वेश मात्र धारण करने से यहां पर इतना सम्मान प्राप्त होता है, तो अगर हम प्रभुपाद जी के लिए थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो फिर क्या कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आई विल ट्राई टू डू इट, के आगे चलता है आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं। और फिर सातवें स्टेप पे व्यक्ति आता है आई विल डू इट, हम करेंगे। और तत्पश्चात अंत में उनको विश्वास होता है कि कृष्ण हमारी सहायता करेंगे। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हतोत्साहित नहीं, परीक्षित महाराज आशाबद्ध हैं। पितामह में समरे मरंजरे देवव्रता आदि अतिरथै तिमिंगलै दुरत्ययम् कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरम वत्सपदम स्मयत् प्लवाः। परीक्षित महाराज मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अन्याय पूर्वक उनको अभिश्राप दिया गया। जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हम उस घड़ी को, उस क्षण को, उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को कभी भूल ही नहीं पाते और मन से वो निकाल नहीं पाते। लेकिन महाराज परीक्षित अब मृत्यु की प्रतीक्षा में ये नहीं सोच रहे कि मुझे इस प्रकार का अभिश्राप कैसे मिला, वो केवल सोच रहे हैं, और ये नहीं सोच रहे कि अरे कृष्ण ने माँ के गर्भ में मुझे बचा लिया था कि, लेकिन अभी मुझे उस श्राप से नहीं बचाया, ब्रह्मास्त्र से बचा लिया, ब्रह्म श्राप से नहीं बचाया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वो नहीं सोच रहे। महाराज परीक्षित केवल यही सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण के प्रति कितना कृतज्ञ हूं। छह प्रकार से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। पहला कहते हैं, कृष्ण ने मेरे पितामहों की रक्षा की कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। दूसरा, कृष्ण ने मेरी सहायता की मेरे माँ के गर्भ में प्रवेश करके और ब्रह्मास्त्र से मुझे बचाया। तीसरा, कृष्ण ने अपने चक्र से मुझे बचाया, स्वयं अपने चक्र का प्रयोग किया। चौथा, कृष्ण ने माँ के गर्भ में मुझे अपना सुदर्शन, सुंदर स्वरूप का दर्शन दिया। पांचवा, ब्रह्मास्त्र के द्वारा उत्पीड़ित होकर मेरा शरीर ध्वस्त हो चुका था, लेकिन उसे फिर पुनर्जागृत किया। और छठा, कृष्ण ने मेरी रक्षा इसलिए की क्योंकि मैं पांडवों का पौत्र था। अपि मे भगवान प्रीत कृष्ण पांडु सत प्रिय पैत्र सत्सेव्य प्रीत्यर्थम यद गोत्रस्यात बांधव। क्योंकि मैं उनके गोत्र में जन्मा था इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मेरी रक्षा की है। तबे महाप्रभु तारे कृपा दृष्टि कोरी आश्वासिया कहे तुमी कह कृष्ण हरि। महाप्रभु जब उस म्लेच्छ गवर्नर को आलिंगन करते हैं, उनको आश्वासन देकर कहते हैं कि तुम अब कृष्ण का नाम लो और कीर्तन करो। और जब महाप्रभु ने शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं तो कृतज्ञ होकर वो कहता है, सेई कहे मोरे जदि करेला अंगीकार एक आज्ञा देह सेवा करिए तुमार। तो कहते हैं, सही कहे मोरे जदि कोयला अंगीकार, अगर आपने मुझे अंगीकार कर लिया हो तो एक आज्ञा देह सेवा करिए तुमार, आप कृपा करके मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति में प्रगति के तीन लक्षण हैं। पहला लक्षण प्रगति का ये है कि हम हरिनाम में रुचि लेने लगते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जपने लगते हैं और उसके जो जप करने की संख्या को बढ़ाने लगते हैं। अब दूसरा लक्षण ये कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव हो रहा है कि नहीं, कैसे पता पड़े? तो ये दूसरा लक्षण क्या, एक आज्ञा देह सेवा करिए तोमार, कि हम भगवान की सेवा में लगने के लिए आतुर होते हैं और हम लोग सेवा के लिए निवेदन करते हैं, मुझे सेवा में नियोजित कीजिए। तीसरा लक्षण, गो ब्राह्मणे वैष्णवे हिंसा कोरिया छ अपार, सही पाप हुए ते मोर हो का निस्तार। तीसरा लक्षण ये कि गो ब्राह्मण वैष्णव हिंसा करिया छ अपार, वो कहते हैं मैंने पूर्व काल में गायों की हत्या की और वैष्णवों की निंदा की। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मानव जीवन में दो सबसे बड़े पाप हैं, गोहत्या और दूसरा वैष्णवों की निंदा। ये दोनों वायलेंस या आक्रोश के श्रेणी में आता है। सही पाप होइते मोरा होका निस्तार, कृपा करके मुझे इन पापों के प्रपंच से मुक्त कीजिए। तो सबसे पहले नाम में रुचि, दूसरा सेवा के प्रति वास्तविक भाव, और तीसरा वैष्णवों की निंदा करने के प्रति पूरी उपेक्षा और उससे पूर्णतः छुटकारा। तब महाराज परीक्षित के इन आध्यात्मिक गुणों के ऊपर विश्लेषण करने के पश्चात हम समझ सकते हैं कि दशम स्कंद श्रीमद् भागवत और कृष्ण जन्म की कथा को सुनने की योग्यता क्या है, क्योंकि जब तक ये न्यूनतम योग्यता न हो, कृष्ण की कथाओं के प्रति वास्तविक आस्था और श्रद्धा जागृत नहीं होगी। इसलिए दशम स्कंद के आरंभ के कई श्लोकों में जो महाराज परीक्षित के गुणों का, चरित्र का, उनके कृष्ण कथा को सुनने के प्रति रुचि का, उनकी आस्था का, उनकी एकाग्रचित्तता का जो वर्णन है, उसका विश्लेषण करना बड़ा महत्वपूर्ण और आवश्यक है। अब दूसरा मुद्दा उठता है कि उस समय द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण जब अपने अवतरण की तैयारी कर रहे थे, तो संपूर्ण पृथ्वी पर असुरों का बोलबाला बढ़ चुका था, असुरों का विध्वंस चारों दिशाओं में था, और उसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी देवी स्वयं एक गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास चलती है और कहती है कि इन सभी असुरों के पापों के भार से मैं बहुत उत्पीड़ित हूँ, मुझसे सहन नहीं हो रहा, कृपा करके मेरी सहायता कीजिए, मेरा संरक्षण कीजिए। पृथ्वी देवी सभी देवताओं के अव्वल दर्जे के देवता ब्रह्मा जी के पास गए, जिनकी बुद्धि की श्रेणी सामान्य नहीं, अति मानवीय और असामान्य है। सर एक नहीं चार हैं, और वो चार सर के अंदर इस प्रकार की बुद्धि है जो कोई सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। अर्थात समस्या का समाधान करने की क्षमता और शक्ति अगर किसी व्यक्ति के अंदर पूरे ब्रह्मांड में अगर है, तो वो है ब्रह्मा जी। लेकिन जब पृथ्वी देवी आके बोलती है मैं बड़े प्रॉब्लम में हूं, बहुत सारे असुरों का बोलबाला हो चुका है, कुछ कीजिए, ब्रह्मा जी विनम्रता के मूर्तिमान स्वरूप कहते हैं कि ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान मेरे पास नहीं। और पृथ्वी देवी उनको देखकर अवाक रह गए, अरे मुझे तो लगा कि आप ही गुरु हैं, आपके पास भी समस्याओं का समाधान नहीं रहता। ब्रह्मा जी ने कहा, लीडर का पहला गुण होता है कि वो सभी के सामने सत्य सार्थक व्यवहार करे, अपने औकात के ऊपर की समस्या को लेकर वो इस जगत में डूबता न रहे। इसलिए मैं प्रामाणिक रूप से कहता हूँ, इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं, हमें अपने ऊपर के अधिकारियों के पास जाना होगा समाधान ढूंढने के लिए। इसलिए ब्रह्मा जी पृथ्वी देवी को लेकर चलते हैं और पहुँचते हैं सभी देवताओं के पास, और ब्रह्मा जी देवताओं को कहते हैं कि समस्या इतनी गंभीर है कि अकेला व्यक्ति अगर हम जाकर भगवान के सामने कुछ बोलेंगे तो भगवान हो सकता है हमारी बात गंभीरता पूर्वक स्वीकार न करे। जब सामूहिक रूप से एकत्रित होकर जब कई लोग समस्या को व्यक्त करें तो उस सामूहिक व्यक्तिकरण में बड़ा बल है, और भगवान चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हो अवश्य गंभीरता पूर्वक प्रतिक्रिया करेंगे। इसलिए इसको कहते हैं संकीर्तन। संकीर्तन का अर्थ है कि भले मैं जप करते करते सो जाऊं लेकिन मेरे बगल वाला जप अच्छा कर रहा है, और भगवान उसके जप से प्रसन्न होकर उसकी ओर जब दृष्टिपात करते हैं तो बगल में सोते हुए मैं उसको भी देखकर थोड़ी कृपा करके सोचते हैं कि भाई कम से कम प्रयास तो कर रहा है। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई सोचता है कि भक्तों के संग को छोड़कर कोई भक्ति कर सकता है, कलयुग में लगभग असंभव है। तो इसलिए संकीर्तन का अर्थ है कि संपूर्ण वैष्णव संघ के सामूहिक भक्तिमय प्रयत्न का फल हर भक्त को प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी सबको लेकर जा रहे हैं। ब्रह्मा तद उपधार्याथ सह देवै तया सह जगाम सत्री नयनस तीरस क्षीर पयोनिधे। सभी 33 कोटि देवता ब्रह्मा जी और शिव जी को भी साथ में लेके चले। अब शिव जी को क्यों लेके गए? क्योंकि असुरों का वध करना है, और बाय चांस अगर भगवान बोले मैं तो अपनी लीलाओं में व्यस्त हूँ, बीच बीच में आकर आप बेकार के कामों में मुझे बुलाओ मत, मैं उलझना नहीं चाहता, मैं अपनी लीलाओं में मस्त हूँ, ये मारने वारने का काम मुझे अभी नहीं करना है, तब फिर ब्रह्मा जी शिव जी को रेडी लेके गए थे कि चलो प्रभु आप मत आओ, कम से कम थोड़ा शिव जी को एक संकेत कर दो कि अपना तीसरा नेत्र खोल दें समय से पूर्व। तो फिर भी सभी असुरों का जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए साथ में शिव जी को भी लेके गए थे कि बाय चांस भगवान ने मना किया तो कोई तो हो। तीरम क्षीर पयो निधे है। तो इसलिए आगे कहते हैं तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेव वृषाकपिम पुरुषम पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहिताः। तो सभी लोग क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर ध्यान लगाकर भगवान के चरणों का संकल्प करते हुए भगवान का नाम लेने लगे, कीर्तन करने लगे। और तब ब्रह्मा जी को भगवान ने व्यक्तिगत रूप से संकेत किया। भगवान का संदेश केवल ब्रह्मा जी सुने, और ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु के संदेश को सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। क्या कहा? पुरैव पुंसा वधृतो धराज्वरो भवद्भिरंशैर्यदशूपजन्यताम्। पुरैव पुंसा वधृतो धरा ज्वरो, वो ये कि पुरैव पुंसा कि बहुत पहले से जो असुरों के प्रभाव से जो ज्वर उठ खड़ा हुआ है उसको दूर करने के लिए मैं अवतीर्ण होऊंगा, मेरी सहायता करने के लिए आप सभी देवतागण भी प्रकट हो जाइए, और यादव वृष्णि वंश इत्यादि में आप लोग सब प्रकट होइए। भवद्भिर अंशई यदुषु उपजन्यताम, आप सभी लोग इसमें शामिल हो जाइए और अवतरित हो जाइए। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि आप सभी लोग अवतरित हो जाइए। ब्रह्मा जी ने आके देवताओं को कहा आप सभी अवतरित हो जाइए। एक व्यक्ति रह गया इसमें, ब्रह्मा जी स्वयं। तो इसलिए भवद्भिर अर्थात ब्रह्मा जी अपने आप को इस भगवान के इन लीलाओं में उपस्थित होने से वंचित कर रहे हैं, अथवा भगवान के उन लीलाओं को पारदर्शी रूप से भगवान के आदेश को स्वीकार नहीं कर रहे। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन आया है कि अगर हम केवल श्रेय लें और सेवा न करें वो उचित नहीं। दूसरा, पहले हमें सेवा करनी है और तब जाकर भक्ति के इस आस्वादन को हम लोग धारण कर सकते हैं। तीसरा, अगर कोई बहुत बड़ा भक्त जिससे लोग बहुत कुछ अपेक्षा करते हैं वो छोटी भी गलती करे तो बहुत बड़ा घातक सिद्ध होता है। और चौथा, कि जब सेवा के अवसर हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो कई बार बैंड बाजे के साथ घोषणा करते हुए वो प्रकट नहीं होते। सेवा के अवसर बड़े शांति से धीमे धीमे हमारे सामने से चुपचाप प्रकट हो जाते हैं, और अगर हमने सतर्क होकर ध्यान नहीं दिया तो फिर वो अवसर आगे भी निकल जाएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी के लिए बड़ा स्वर्णिम अवसर था इन लीलाओं में भाग लेने का, लेकिन उस समय वो उसका पूरी तरह से लाभ नहीं लिए। इसीलिए भविष्य में चलकर दशम स्कंद के 13वें और 14वें अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला होती है। भगवान कहते हैं कि चलो भाई, आप मेरे साथ प्रकट नहीं हुए बाकी देवताओं के साथ, तो फिर आपको हम अलग से मजा चिखाएंगे। और फिर ब्रह्मा जी के साथ जब यह लीला हुई तब ब्रह्मा जी पश्चाताप करके प्रार्थना किए, और तत्पश्चात बरसाना में ब्रह्मा जी अपना चार सर को लेकर प्रकट हो गए, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं नित्य वहां पर हो सके। तो इसलिए भक्ति में तीन प्रमुख चुनौतियां हम लोग अनुभव कर सकते हैं। पहला है आंतरिक, जो कि इंटरनल ऑफेंस, चार प्रकार के अपराध, तीन प्रकार की चुनौतियां। तो तीन प्रकार की चुनौतियों में सबसे पहले चुनौती है हमारे स्वाध्याय में संशय उठना। जब हम ग्रंथ पढ़ें, कथा सुने, तो फिलॉसफी में डाउट्स, तो अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। तो कृष्ण कथा या स्वाध्याय में संशय, ये पहली चुनौती है। दूसरी चुनौती है कि कृष्ण की सेवा करते समय टू बी इनअटेंटिव ड्यूरिंग सर्विस, तो इसको कहते हैं ध्यान भंग होना। ध्यान नहीं है सेवा में, कुछ सेवा दी गई है लेकिन ध्यान कहीं और है। और तीसरा, कि वैष्णवों के संग में जब हम संबंध स्थापित करें तो उस संबंध में हम अपराध करें। तो संबंधों में अपराध, स्वाध्याय में संशय और सेवा में ध्यान भंग होना, ये तीन महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। तो चार प्रकार के अपराध में सर्वप्रथम अपराध है आंतरिक, जो कि हम मानसिक रूप से करें, उसकी कोई भली प्रतिक्रिया न हो, लेकिन ऐसे मानसिक अपराध का परिणाम होता है कि उससे और अपराध करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। दूसरा, हम अज्ञात रूप से कोई अपराध करें, हमारे अंदर कोई इस प्रकार की इच्छा भी नहीं और न जानकारी भी है कि हमने ऐसा अपराध कर दिया, अज्ञात रूप। तीसरा, कि गलती से ये अपराध हो जाए, फिर हम समझ जाएं कि हाँ अपराध हुआ है, लेकिन वास्तव में हमारा ऐसा विचार नहीं था, लेकिन कुछ गलती हो जाए और किसी प्रदोष के अंतर्गत इस तरह कुछ हो जाए, तो ये बिना इंटेंशन के होता है, लेकिन व्यक्ति समझता है कि हाँ मैंने गलती की और उसके लिए पश्चाताप करता है। चौथा, जो जानबूझकर अगर हम अपराध करें, जिसको कहते हैं डेलिब्रेट, पूर्णतः उसके विषय में जानकारी हो और फिर करें। तो इसलिए अपराधों से बचना बड़ा महत्वपूर्ण है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो सर्वप्रथम हमें सहिष्णु होना आवश्यक है, किसी भी विस्फोटक परिस्थिति में हम सहन करें और तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त न करें, धीरज धारण करें। दूसरा, परिस्थिति के अनुसार हम समझें कि ये जो अभी हमारे साथ हादसा हुआ है, इसके पीछे परिस्थिति क्या हो सकती है? तो पूरी परिस्थिति को समझने का हम प्रयास करें। तीसरा, हम इस अवस्था को स्वीकार करें कि हाँ भाई, विविध प्रकार के लोग विविध प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, बोलने चालने का ढंग अलग-अलग है, उसको हम स्वीकार करें। चौथा, हम सोचें कि हाँ, मेरे साथ ये हादसा हुआ है, लेकिन मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ और वैष्णव सत्संग में किसके लिए आया हूँ? हाँ, कृष्ण प्रेम। और महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम आश्लिष्य वा। इतने बड़े महत्वाकांक्षा के सामने ये जो हादसा है बड़ा तुच्छ है। तो इसलिए इस हमारे भक्ति के कार्य के महत्व को निरंतर दृष्टि में रखते हुए अन्य परिस्थितियों को देखे। और पांचवा, हम समझे कि इस सब स्थिति से हमें ऊपर उठना महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, फ्लाइट जब चले, जब ऊपर आसमान में आए, तो वही शहर के बिल्डिंग छोटे दिखने लगते हैं। तो इसलिए दिव्य स्तर पर हमें चलना है। समझना चाहिए कि इससे भी और दुष्कर परिस्थिति हो सकती थी। एक बार एक व्यक्ति नदी पार कर रहे थे, नौका में कई लोग बैठे हुए थे, उनके बगल में एक पहलवान बैठा हुआ था। तो सज्जन ने उनको पूछ लिया कि बताइए टाइम क्या हुआ है। तो पहलवान ने अपना मुट्ठी लिया और उसके सर पे जोर से दे मारा, इतना जोर से मारा कि दिन में तारे दिखने लगे। और आसपास के लोग सब उसको बोलने लगे, अरे इतने जोर से मारा है, तुम भी दिखाओ तुम कौन हो, हम भी आपके साथ हैं, छोड़ो मत, डुबा दो पानी में। तो ये बेचारा, सर पे तो जोर से लगी थी, पहले ही माथा घूम रहा था। फिर उसने देखा, फिर भी पहलवान का साइज क्या है, देखा। और उसके बाद बाकी लोगों को बोला, मैं तो शुक्र करता हूं कि अभी मैं इसको पूछ लेता हूं कि मारा क्यों। तो उसने पूछ लिया कि भाई, आपने जोर से तो मारा, मैंने तो केवल टाइम पूछा था आपको, तो इतने जोर से मुक्का मारने क्या जरूरत है, ये कोई शिष्टाचार है क्या, वो भी सबके सामने। तो पहलवान कहता है, आपने टाइम पूछा, दोपहर के 1 बजे हैं, ये मेरा स्टाइल है अपना टाइम बताने का, बताओ क्या करोगे। तो बाकी लोग बोले, ये अन्याय है, अन्याय है, छोड़ो मत, पहला झापड़ तुम मारो, फिर हम हैं आपके साथ। तो ये फिर देखता है कि साइज तो बहुत बड़ा है, पहलवान खतरनाक दिख रहा है। बाकी लोगों को मुड़ कर कहता है, मैं तो शुक्र करता हूं कि 1 घंटा पहले टाइम नहीं पूछा। 12 पढ़ते थे। तो कभी परिस्थिति अपने से इतना अधिक शक्तिशाली और हावी हो जाए हम पर, तो करे तो क्या करें, धीरज के साथ सहन करना ही पड़ता है। और प्रभुपाद कहते थे कि किसी के चरित्र को, आदतों को परिवर्तित करना हो, वन हैज टू शेड गैलन्स ऑफ ब्लड। तो चरित्र परिवर्तन, आदतों का परिवर्तन इतना आसान नहीं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य जो एनवलप के ऊपर पोस्टेज स्टैंप लगा रहे थे, अपना थूक लगा लगा के, प्रभुपाद अंदर आके देखे, बोले ये क्या कर रहा है, मुची, इतनी बुरी आदत है ये, झूठा लगा रहे हो, पता है क्या चिट्ठी के अंदर कितना दिव्य हमने क्या क्या लिखा हुआ है, एक कटोरी में पानी लो और उससे लगाओ, ये नहीं चलेगा, तुम्हारी बुरी आदतें हैं, पुरानी है, छोड़ दो उसको। तो जाके कटोरे में पानी भर के लाया और स्टैम्प से वो लगाने लगा एनवलप। लगभग सारे एनवलप पे स्टैम्प लग गए थे, एक ही स्टैम्प रह गया था, पानी खत्म हो गया। अब वो सोचा, यार इतना दूर जाके कौन पानी लेके आएगा, कमरा तो खाली है, प्रभुपाद भी दिख नहीं रहे, अपना हाथ जगन्नाथ, लिया स्टैम्प, जिहवा खोल के यूं जैसे ही टच किया, दरवाजा खुला, प्रभुपाद खड़े थे और बोले, मैं तुमको बोला था मत करो, फिर भी वही किया। तो उसने कहा, मुझे लगा कोई नहीं देख रहा है। तो फिर प्रभुपाद बोले कि भक्ति का अर्थ है कि हम हमेशा स्मरण करें कि कृष्ण हमें देख रहे हैं, हमारे हर वाणी को सुन रहे हैं, हमारी हर प्रतिक्रिया को ध्यान पूर्वक अवलोकन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सारे जब देवता आकर प्रकट हुए, तब भगवान ने उन सभी को आदेश किया कि आप लोग भी प्रकट हो जाइए और हम उपस्थित होंगे। अब प्रसंग आता है कि देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ और कंस देवकी के भाई के रूप में उनके रथ पे आरूढ़ होकर सारथी बनकर नवविवाहित अपनी बहन और उनके पति दोनों को वाहन करके ले जा रहा था। तो वाहन करके जब लेके जा रहा है तो चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग उनके साथ हैं। ये केवल आनंद और आमोद प्रमोद का एक वास्तविक दृष्टि दृश्य लग रहा था, और कोई भी व्यक्ति इसे देखता तो उनको लगता कि वास्तव में चैन और सुकून का मूर्तिमान स्वरूप है ये। और देखो कंस का देवकी के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम है। अब कंस वसुदेव और देवकी की सेवा में लगे हैं और वसुदेव और देवकी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और कंस को भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं, और ऊपर 33 कोटि देवता घबरा रहे हैं। देवताओं को लग रहा है कि कंस अगर इतनी प्रामाणिक सेवा करेगा, वसुदेव और देवकी जैसे भगवान के भविष्य के माता और पिता की सेवा अगर कंस करेगा तो वैष्णव सेवा का पुण्य उसको मिल जाएगा, और जो वैष्णव सेवा करेगा हो सकता है कृष्ण भी उसको वैष्णव की श्रेणी में डाल दें। और उसको वैष्णव की श्रेणी में घोषित कर दिया तो कभी भी उसकी हत्या संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए देवताओं ने विचार किया कि हमें हस्तक्षेप करना चाहिए और आकाशवाणी के मार्ग से उद्घोषित किया, अस्यस्त्वामष्टमो गर्भो आहता यम वहस अबुधा। अबुधा अरे मूर्ख कंस। तो पहले कंस को जोर से चिल्लाया, डांटा गाली देकर। तो कंस भी चौंक कर ऊपर देखा, ये आवाज कहाँ से आ रही है। और फिर उस आकाशवाणी ने कहा, अरे मूर्ख, जिस बहन की तुम इतनी सेवा कर रहे हो उसका 8वां पुत्र तुम्हारी हत्या का कारण बनेगा। और जैसे ही कंस ने अपनी हत्या का विषय सुना, क्षण भर में उसका अनुराग आक्रोश के रूप में परिवर्तित हो गया। बाएं हाथ से देवकी के केश बंद को अपने हाथ में ले लिया और दाएं हाथ में अपनी नंगी तलवार को लेकर अपनी बलिष्ठ भुजाओं को देवकी के मस्तक के ऊपर लिया और उस नंगी तलवार को देवकी के गले पर उतारने ही वाला था। और एक क्षण के अंदर वो तलवार नीचे आने वाली थी, देवकी का सर कटने वाला था। इतने शक्तिशाली योद्धा के हाथ में अगर ऐसी नंगी तलवार हो और अबला नारी हो तो फिर क्या आशा है उसके बचने का। ऐसे भयंकर निराशाजनक परिस्थिति में वसुदेव जी निराश नहीं हुए। परिस्थितियां निराशाबद्ध थीं, लेकिन व्यक्ति के इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो निराशावाद का आश्रय ले ले या ऐसे भयावह अंधकारमय निराशा की परिस्थिति में भी निरंतर आशावादी बनकर प्रयत्न करता रहे। ये वसुदेव की विशेषता थी, इसलिए उनको कहा गया है शौरी शौरी शौरी। बार बार वसुदेव जी का नाम शौरी के रूप में संबोधित किया गया है, अर्थात शौर्य प्रदर्शन में अव्वल शूरवीर। तो भागवतम के दृष्टिकोण से शौर्य प्रदर्शन किसी को पराजित करना नहीं, वास्तविक शौर्य प्रदर्शन परिस्थिति के अत्यधिक अभिभूत होने पर भी हम उस परिस्थिति के सामने पराजय स्वीकार न करें और युद्ध करने की इच्छा शक्ति को बनाए रखें। और युद्ध करने की इच्छा जब तक बनी रहे, ऐसे योद्धा को भागवत में शौरी कहा गया है। इसलिए जो वसुदेव जी ने कहा किया, ये बड़ा ही प्रशंसनीय मुद्दा है, क्योंकि यहां पर मंच पर बैठकर माइक्रोफोन के सामने हर प्रकार के साउंड सिस्टम और लाइट की व्यवस्था में कथा करना बड़ा आसान है, लेकिन अगर सर पर तलवार हो और केवल एक क्षण हो आपके पास, और वसुदेव के पास वो एक क्षण था, क्योंकि एक क्षण में वो तलवार, नंगी तलवार नीचे आने वाली थी, और उस एक क्षण में उसके पास समय था कि वो क्या कंस को सुनाए जिसके कारण कंस देवकी को जीवन दान दे। इतना खतरनाक महत्वपूर्ण भागवतम क्लास दूसरा नहीं हो सकता था। वसुदेव को हर शब्द माप तोल कर बोलना है, और वसुदेव जी इसलिए बड़े विकट परिस्थिति में थे। इति युक्तः स कलप पापो भोजानाम कुलपांसन भगिनेम हन्तुमारब्धम खड्गपाणि कचे अग्रहित, कि भगिनेम हन्तुमारब्धम, वो अपने बहन को मारने के लिए तैयार हो गए, और ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है नास्तिक, जो भगवान में, प्रभुपाद कहते हैं नास्तिक मतलब क्या, जो कहते हैं भगवान नहीं है, भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। तो चार प्रकार के नास्तिक होते हैं, पांच प्रकार के। पहले हैं जो स्वाभाविक रूप से वो नास्तिक होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी आस्तिकता के विषय में विचार ही नहीं किया। दूसरे जो तत्व ज्ञान की दृष्टि से नास्तिक होते हैं, कि वो वास्तव में भगवान के विषय में समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं है, और उस अपरिपक्वता के कारण भगवान के विषय में समझ नहीं पाते, फिलोसॉफिकल एथीस्ट। तीसरा है इमोशनल एथीस्ट, अर्थात जो भावनात्मक रूप से नास्तिक हैं। और क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कोई विपत्ति आ गई, कोई धंधे में समस्या आ गई, कोई पारिवारिक स्वजन की अकाल मृत्यु हो गई, या फिर धार्मिक संस्थाओं में जाकर उन्होंने देखा कि लोगों का व्यवहार कुछ ठीक नहीं, या जो कुछ भी कारण हो, भावनात्मक रूप से वो नास्तिक बन जाते हैं, भगवान में विश्वास रखना छोड़ देते हैं। चौथा जो कवर्ड एथीस, अर्थात जो आवृत नास्तिक होते हैं, अर्थात अपने आप को आस्तिक बतलाते हैं लेकिन निर्विशेषवाद में विश्वास रखते हैं। तो ये हैं जो नास्तिक हैं लेकिन आवरण के साथ। और पांचवे साइकोलॉजिकल एथिस्ट, अर्थात वो जो कि मानसिक रूप से एक दृष्टिकोण से नास्तिक हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं भगवान में विश्वास रखता हूं, लेकिन परिस्थिति आने पर वैसा व्यवहार नहीं कर पाते। तो अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि के दोनों के बीच में ये बड़ा अंतर था। दुर्वासा मुनि भी वैसे देखा जाए तो योगी थे, लेकिन जब परिस्थिति आई तो अम्बरीश महाराज केवल भगवान के ऊपर निर्भर रहे, उस समय वो भगवान का स्मरण कर सके। तो इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश की यात्रा में गए, तो विभिन्न प्रकार के इन नास्तिकों को परिवर्तित करने के लिए गए। दक्षिण देशेर लोक अनेक प्रकार, केह ज्ञानी केह कर्मी पाषंडी अपार। कई कर्मी थे, कई ज्ञानी थे, कई पाषंडी थे। सही सब लोक प्रभुर दर्शन प्रभावे, निज निज मत छाड़ी होइला वैष्णवे। महाप्रभु ने उन सभी को अपने अपने मतों से छुड़वा कर उन्हें हरिनाम में और वैष्णवता में प्रवेश कराया। तार्किक मीमांसक जत मायावादी गण सांख्य पातंजल स्मृति पुराण आगम। तार्किक मीमांसक मायावादी और सांख्य पातंजलि इत्यादि ये सभी विभिन्न प्रकार के श्रेणी के जो लोग सिद्धांत का पालन कर रहे थे, महाप्रभु ने उन सभी को तर्क का प्रयोग करके अपनी ओर खींच लिया। निज निज शास्त्रोद्ग्राहे सबाई प्रचंड सर्वमत दूषी प्रभु खैला खंड खंड। तो महाप्रभु ने देखा कि इन सभी के मतों को समाप्त करने के लिए कभी शास्त्र का प्रयोग किया, कभी तर्क का प्रयोग किया, लेकिन सर्वमत दूषी प्रभु कैला खंड खंड, उन सभी के मतों को पराजित करके महाप्रभु ने उन्हें पूरी तरह कृष्ण के चरणों के प्रति आस्था दिला दी। हरि हरि प्रभु मते करे न प्रवेश ए मत वैष्णव प्रभु कोयला दक्षिण देश। इस प्रकार महाप्रभु ने संपूर्ण दक्षिण देश को वैष्णवता में प्रविष्ट कराया। तो ये तीसरा मुद्दा है आज का कि जैसे ही कंस के ऊपर उनके स्वयं की मृत्यु की संभावना आई, अपने बहन के प्रति स्वाभाविक वात्सल्य भाव को वो भंग कर दिए। एक्शंस ऑफ अ पर्सन विथ सेल्फिश डेमोनियक इंटेंशंस कैन नेवर बी ट्रस्टेड। कोई भी व्यक्ति जो स्वार्थ से पूरित भाव से अभिभूत हो उस पर कभी श्रद्धा नहीं की जा सकती। अब वसुदेव जी के पास केवल एक क्षण रह गया है, तो जो दृश्य हमारे सामने है, विवाह के दिन देवकी और वसुदेव रथ पर हैं, कंस सारथी के रूप में अभी लगाम छोड़कर एक हाथ में तलवार लिए, दूसरे हाथ में देवकी के केशबंद को लिए, अब तलवार को नीचे लाने ही वाला है। इस दृश्य में हम देखते हैं कि वसुदेव जी क्या कंस को समझाने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले कहते हैं, श्लाघनीय गुण शूरैर भवान भवान भोज यशस्कर तम स कतम भगिनीम हन्याम श्रिय उद्वाह पर्वणि। तो सबसे पहले यहां पर क्योंकि वसुदेव जी भी क्षत्रिय हैं, राजनीति के दांवपेच से पारंगत हैं, तो सम भेद दान इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं, तो साम का प्रयोग कर रहे हैं, गुण कीर्तनम श्लाघनीय गुण शूरैर, अरे आप कितने बड़े शूरवीर हो, आपके सारे शौर्य की गाथाएं प्रशंसनीय हैं, वंदनीय हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। भवान भोज यशस्कर और फिर लाभ का प्रयोग कर रहे हैं, भवान भोज यशस्कर, आप भोज वंश के कुल दीपक हो, यश के मूल कारण हो। स कथम भगिनीम हन्याम, अब भेद का प्रयोग कर रहे हैं, देवकी महिला है, दूसरा अपने बचाव के लिए उसके पास अस्त्र नहीं, तीसरा आपकी बहन है, चौथा विवाह का यह दिन है। तो इस प्रकार कथम भगिनीम इस प्रकार शब्द प्रयोग करके भेद का बीज डाल रहे हैं कंस के मन में, संशय उत्पन्न कर रहे हैं, कैसे आप अपनी बहन को इस प्रकार कर सकते हो, तो कंस के मन में डाउट पैदा कर रहे हैं। और फिर हन्यात कथम हन्यात, फिर कह रहे हैं आप कैसे मार सकते हो, अर्थात आपको नहीं मारना चाहिए, अर्थात दान, उनसे कुछ दान ले रहे हैं। तो सम भेद दान इत्यादि सभी का प्रयोग करते हुए कहते हैं, आप अपनी मृत्यु से भयभीत हो, लेकिन कम से आप जानो कि हर जीव एक आत्मा है, शरीर नाशवान है। मृत्युर जन्म बताम वीरा देहेन सह जायते, अद्यवा अब्दशतांतेवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवम। आप क्या सोचते हो कि आप देवकी का गला काटकर अपने आप को अमर बना सकते हो? अरे भाई, जिस दिन मृत्यु आनी है उस दिन आके ही रहेगी। अद्य वा आज या अब्द शतांते वा, कई अब्दों के बाद, कई हजारों वर्षों के बाद मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवम। अवश्य मृत्यु प्राणियों को आनी ही है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं मृत्यु को आप बहुत देर तक धकेल नहीं सकते, और कम से कहेगा लेकिन किसने देखा है अगला जन्म? तो कहते हैं कि जब रात्रि को स्वप्न देखते हो तो जैसे स्वप्न में आपका शरीर परिवर्तित होता है, आप अपने वर्तमान शरीर को भूलकर स्वप्न में अन्य किसी दृश्य को देखते हो, अनेक अनेक परिस्थितियों को अनुभव करते हो, उसी प्रकार ये शरीर भी इस आत्मा को छोड़कर अन्य किसी, ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करेगी, और इस शरीर के स्थानांतरण के पीछे कर्म का सिद्धांत प्रधान है। और इसलिए कर्म के सिद्धांतों के अनुसार अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं उसके कारण आप कंस भोजराज के रूप में प्रकट हुए हो, लेकिन अधिक समय तक ये पुण्यों का संचय चलेगा नहीं। ये पुण्य जब नष्ट हो जाएंगे ये राजा का शरीर भी नाश हो जाएगा और आपको कोई कीड़ा या कुत्ते का भी शरीर मिल सकता है। लेकिन एक गुड न्यूज़ है, वो ये कि राजा के रूप में जो आपको इंद्रियों का सुख प्राप्त हो रहा है वो उस कीड़ा के रूप में और कुत्ते के रूप में भी वैसे ही इंद्रियों का सुख अनुभव होगा, कोई डिग्री में डिफरेंस नहीं रहेगा। इसीलिए आप इस राजा रूपी शरीर को उसके नाश होने के विषय में खेद मत करो, यू वोंट लूज एनीथिंग, क्योंकि जो भी शरीर प्राप्त होगा उस शरीर में उस इंद्रियों के अनुसार इंद्रिय विषय उसे रुचिकर आकर्षक लगने लगते हैं, उसमें उसका मन आविष्ट हो जाता है। ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवेदश समीर वेगानुगतम विभाव्यते। तो कहते हैं जैसे आसमान में चंद्रमा की किरणें किसी जलाशय में प्रतिबिंबित होती हैं, तो जलाशय के कंपन के कारण अगर हम उसका प्रतिबिंब देखें जलाशय के अंदर, तो लगता है कि वो चंद्रमा का प्रतिबिंब थिरक रहा है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा स्थायी है आसमान में, थिरकने का हमको केवल एक आभास हो रहा है। क्यों? क्योंकि जलाशय की लहरें आंदोलित हो रही हैं। उसी प्रकार वो जलाशय वास्तव में रात्रि के रजनी के अंधकार में पूरी तरह प्रकाशहीन है, लेकिन उस चंद्रमा के प्रतिबिंब कारण वो जलाशय प्रकाशमान लग रहा है। अर्थात जल और चंद्र अपने गुणों को एक्सचेंज करते हैं। जल के अंदर थिरकने का भाव है, वो जब चंद्रमा को देता है तो चंद्रमा थिरकता हुआ दिखता है, चंद्र प्रकाशमान है लेकिन वो जल को जब देता है तो जल प्रकाशमान लगने लगता है। उसी प्रकार आत्मा आनंदित है और अमर है, शरीर नाशवान है और ये शरीर के नाश का भय लगा रहता है। तो शरीर और आत्मा दोनों आपस में अपने अपने गुणों को एक्सचेंज करते हैं। इसलिए जब हम गुलाब जामुन खाते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद आत्मा का आनंद, वो थोड़ा लोन देता है शरीर को कुछ समय के लिए, तब वो शरीर के अंदर आनंद का करंट चलता है। लेकिन जैसे ही आत्मा निकल जाए शरीर से, फिर राम नाम सत्य है मुर्दा बड़ा मस्त है, और उसके बाद जब उसको लगाए अपन प्रज्वलित कर दें वो वहीं पर समाप्त तो हो जाएगा। फिर उसे कोई कहेगा नहीं, अरे अरे जला क्यों रहे हो, क्योंकि आनंद अनुभव करने वाला तत्व निकल गया है। उसी प्रकार अगर हम कहते हैं हम अमर हैं, आत्मा अमर है, लेकिन फिर भी बीमारी आती तो भयभीत हो जाते हैं, अरे मरने वाले हैं क्या, क्या होगा, कैसे होगा वो, क्यों? शरीर ने अपना भय का जो गुण है वो आत्मा को लोन कर दिया। तो इसलिए अंदर जो है इस प्रकार आदान प्रदान चल रहा है। तो ये सब तत्व ज्ञान वसुदेव जी कंस को दे रहे हैं। तो इसलिए मृत्यु सबसे खतरनाक प्रभाव है और कभी भी हमारे जीवन में प्रकट हो सकती है। और दुनिया में ये स्टैटिस्टिक्स है, लोग कहते हैं मृत्यु कभी भी आ सकती है, लेकिन 72% लोग दुनिया के अपना वसीयत नहीं बनाते। 72% लोग शरीर छोड़ते हैं बिना वसीयत बनाए, क्योंकि उनको लगता है अभी तो हम जवान हैं, गाड़ी लंबी चलेगी, है कि नहीं। तो इसलिए मृत्यु शरीर का जो जीवन का सबसे बड़ा चेंज एजेंट है, हमें मृत्यु के जब मृत्यु के महत्व को हम समझते हैं, जब मृत्यु को जब प्रायोरिटी देते, जैसे परीक्षित महाराज के सामने मृत्यु आ गई तो बाकी सब महत्वहीन हो गया। दूसरा, मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, उसकी अर्जेंसी को समझना आवश्यक है, शीघ्रता। तीसरा, मृत्यु के संबंध में नम्रता व्यक्त करनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु के सामने बच नहीं सकता। चौथा, मृत्यु के संबंध में स्पष्टता होनी चाहिए कि चाहे हमारे जीवन में कितने भी दूसरी समस्याएं आए, हम इसके बारे में कुछ बोलते रहे, उसके बारे में बोलते रहे, लेकिन मृत्यु का भय जब आता है तब हर व्यक्ति हमें बड़ा ही पूजनीय लगने लगता है। इसलिए समझना चाहिए कि वास्तविक जो तत्व जीवन में क्या है। और फिर ऐसे मृत्यु के परिस्थिति से बचने के लिए वैष्णव संग लेना आवश्यक है। तो ये जो कंस के सामने मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ, उसे वसुदेव जी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर महाप्रभु भी कहते हैं सनातन गोस्वामी को, कुबुद्धि छाड़िया करो श्रवण कीर्तन, औचिरात पाबे तबे कृष्णेर चरण। इस मृत्यु के भय से दूर होने के लिए निरंतर भगवान के दासत्व में मन को रमाए रखना आवश्यक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भौतिक जगत एक जेल की भांति है और इससे निकलने के लिए नाम यही एक साधन है जो हमें बचा सकता है। गुरु नाम च लघु नाम च लघुनी च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वा महर्षि भी, कि बड़ा पाप या छोटा पाप जो कुछ भी हो, नाम के माध्यम से ही हम मुक्त हो सकते हैं। बहुत वर्ष पहले मैं जेल में प्रोग्राम कर रहा था, येरवाड़ा जेल पूना में, और लगभग 500 कैदी उपस्थित थे उस प्रोग्राम में। और वहाँ पर जो कमिश्नर साहब थे जिन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि सब जो है बड़े जो क्राइम किए हुए लोग हैं सब। और जेल प्रोग्राम में एक चीज मुझे अच्छा लगता है कि ऑडियंस गारंटीड होता है, कि सभी को उपस्थित होना ही पड़ता है और सभी लोग आ जाते हैं। तो 500 लोग थे, भरे हुए थे, खचाखच कीर्तन में मजा आ रहा था। फिर मैं बीच बीच में कथा कर रहा था, फिर कीर्तन कर रहा था, और फिर मैंने कहा किसी का कोई प्रश्न है, तो एक व्यक्ति ने हाथ उठाया और कहा मेरा एक प्रश्न है। तो मैंने कहा पूछो। वो कहता नहीं, मैं स्टेज के ऊपर आकर प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो मैं घबरा गया, मैं कमिश्नर साहब को पूछा ये कौन है भाई, स्टेज पे क्यों आना चाहता है। तो बोला इसने 12 मर्डर किया है। तो मैंने कहा मैं 13वां होने वाला हूं क्या, स्टेज पे क्यों आना चाहता है। कहा नहीं, चिंता मत करो, आने दो उसको। तो स्टेज पे आए और वो कहने लगे कि भाई शास्त्र में कहा है हरे राम और आप कीर्तन के समय हरे रामो कहते हो, तो आपका जो उच्चारण उचित नहीं है, शास्त्र के अनुसार नहीं है। सारे कैदी बैठते, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। वो बोले अपने बीच में भी एक पंडित बैठा है, भले कैदी क्यों न हो। तो फिर मैंने उसको कहा कि अगर पका हुआ आपूस का आम लाकर मैं दूं और बोलूं ये आमो है, खाओगे कि नहीं? तो इसलिए हरिदास ठाकुर कहते हैं कि नाम की महिमा ऐसी है, दमष्टि दमशा हतो म्लेच्छो हरामेति पुनः पुनः उक्त्वापि मुक्तिमा आपनोति किं पुनः श्रद्धयाकरणं, कि नाम में आगे पीछे भी कुछ हो जाए तो नाम बड़ा शक्तिशाली है और उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए यहां पर बेचारे वसुदेव जी खड़े हुए हैं और अब इतना सब तत्व ज्ञान कहने के बाद अंत में कहते हैं, एष तवा अनुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा। देखिए आपकी ये अबला छोटी बहन अनुजा कृपणा, अरे देखिए कैसी दयनीय अवस्था में गिड़गिड़ा रही है, पुत्री का, अरे आपकी पुत्री की भांति है, आपके वात्सल्य का पात्र है, आपके शोषण का नहीं, देखो तो इसकी ओर। हन्तुम नार्हसि कल्याणीम, अरे शुभ विवाह हुआ है और उस दिन हत्या करना चाहते हो। इमं त्वाम दीनवत्सल, अरे कंस दीनवत्सल कृपा के मूर्तिमान स्वरूप थोड़ी कृपा करो, वसुदेव जी बोल रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में वो देखते हैं इतना कुछ बोलने के बाद एक क्षण का थोड़ा वहां पर वो विराम लेते हैं देखने के लिए कि पहला डोज मैंने दिया उसका इफेक्ट क्या हुआ है कि नहीं, कहीं बोलते चले जाए और उसको लगे बोर मार रहा है मार दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए बीच में एक पॉज दिया कि भाई कुछ इफेक्ट हुआ कि नहीं। तो उस समय यहां वर्णन आता है कि उन्होंने देखा कि कंस के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, मतलब जीरो इफेक्ट, लेक्चर का कोई इफेक्ट नहीं, कथा सुना सुना के गला सूख गया लेकिन कोई प्रभाव नहीं। कंस यथावत पूरे अपने आत्मविश्वास के साथ तलवार लेकर आक्रमण करने के लिए अभी भी उसी स्थिति में है। निर्बंधम तस्य तम ज्ञात्वा विचिन्त्य अनकदन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुम् इदं तत्रान्वपद्यत। तो अब आप और हम ऐसी अवस्था में रहते तो क्या करते हैं? तो ये वर्णन है अब 5 श्लोकों में कि चाहे कितनी भी विपरीत और निराशाजनक अंधकारमय कोहरे से भरा हुआ वर्तमान क्यों न हो, एक उज्जवल भविष्य का स्वप्न देखते हुए पूर्ण मनोरथ वर्तमान में समाविष्ट करो। ये है वसुदेव, तब जाकर कृष्ण आपके हृदय में जन्म लेंगे। तो अब वसुदेव जी की विचारधारा यहां पर वर्णन है। सबसे पहले निर्णयता, निर्बंधम तस्य तम ज्ञात्वा, निर्बंधम अर्थात हठ, देख लिया कि ये भी जिद कर रहा है मार के ही छोड़ूंगा, ज्ञात्वा समझ गए। विचिन्त्य अनकदंदु भी, वसुदेव ये नहीं सोच रहे मर गए यार ये तो माना ही नहीं छोड़ो मैं भी सो जाता हूं, नहीं, विचिन्त्य, पहला प्लान फेल हुआ दूसरा प्लान हम ट्राई करेंगे, पहली बार हमेशा सेवा थोड़ी सफल होगी, पहली बार एक सेवा सफल हुई, पहला प्रयास सेवा में विफल हुआ दूसरा प्रयास करेंगे, पहला माला में सोते रहेगा इसका मतलब नहीं दूसरे माला में भी सोना है, दूसरे में जाग सकते हैं, पहले 4 माले में जागा है इसका मतलब ये नहीं अगले 4 में भी जागे रहेंगे उसमें सो सकते, इसका मतलब नहीं आगे फिर सोएंगे, माला टू माला बदल सकते हैं भाव। हाँ आज किसी डिवोटी के साथ झगड़ा हो गया इसका मतलब ये नहीं रोज करना है, और किसी ने बुरा मान लिया इसका मतलब ये नहीं कि अपन सोचे कि यह कोई फायदा ही नहीं आ रहकर। तो ऐसे मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहेंगे, या तो साधना में या तो सेवा में या तो संबंध में, इसलिए कहते हैं कीप ट्राइंग। वसुदेव जी, खेलते रहो, छोड़ो मत। प्राप्तम कालम प्रतिव्योढ़ुम, प्राप्तम कालम, तो क्या कह रहे हैं कि हाँ, किसी न किसी समय कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य संभव है। इदम तत्रावपन्यत तत्र अन्वपद्यत। अब कहते हैं कि अब इस काल में, अभी इस वर्तमान में जो इसका चेहरा ऐसा भयंकर खूंखार प्राणी की तरह लग रहा है, लपकने वाला है, समाप्त करने वाला है, अब पहला लेक्चर मेरा फेल हुआ, अब दूसरा मैं क्या दूं? तो दूसरा है निर्णयता, अर्थात निर्णय कर लिया कि मैं तो फिर तीर मारूंगा, फिर ट्राई तो मारूंगा ही, चाहे पहली बार फेल हो गया और डिक्लेयर भी कर दिया फेल, और मान हानि भी हो गई, सबके सामने प्रमाणित भी कर दिया ये फेल हो गया, तो कोई बात नहीं, हम निर्लज्जता के परायण हैं, लगे रहेंगे। दूसरा क्या? दृढ़ता। तो निर्णयता के बाद दृढ़ता। मृत्योर बुद्धिमता पोहयो यावत बुद्धि बलोदयम्, यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोस्ति देहिन। तो कहते हैं, सोच रहे हैं, ये सब वसुदेव जी का इंटरनल चल रहा है, मतलब अपन तो अभी 10-15 मिनट बोल लिए कि ये उसके मन में क्या चल रहा है करके, लेकिन वहां पर ये सब एक एक क्षण के अंदर सब विचार कर लिया। क्या? कि मृत्युर बुद्धिमता ता अपोहयो यावत बुद्धि बलोदयम्। हर मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है कि अपने बुद्धि का, जो कोई भी उनके पास सत्ता हो, शक्ति हो, उस शक्ति और सत्ता का प्रयोग करके उसे मृत्यु को दूर करना है और उसे कृष्ण की सेवा करनी है। मृत्युर बुद्धिमता पोहियो यावत बुद्धि बलोदयम्। तो कहते हैं, कंस के पास तलवार है, मेरे पास तलवार नहीं, लेकिन मेरे पास बुद्धि है, ठीक है, जो भी मेरे पास अस्त्र है उसका मैं प्रयोग करूंगा, बुद्धि भी नहीं, हाथ चलाने की शक्ति है, चलो उसका हम प्रयोग करेंगे। अर्थात जो कुछ भी सत्ता दी है उसको लेकर भगवान की सेवा में टूट पड़ना, इस विश्वास के साथ कि तन मन धन के साथ लग जाओ और उसका प्रयोग करो। यदि असौ न निवर्तेत ना अपराधोस्ति देहिना। तो अभी वसुदेव की सेवा क्या है? देवकी को बचाना। अब देवकी को बचाने के लिए ना उनके पास बाण है, न तीर है, न तलवार है, न कुछ है, क्या है? बुद्धि है और वाणी है। तो बोलता है, इसको और इसको ऐसा मैं चलाऊंगा, इस तरह चलाऊंगा, अधिक से अधिक विचार करके, ये न के न प्रकारे न इसकी बुद्धि बदल जाए। तो उनके पास जो भी सीमित साधन था, उस सीमित साधन को पूरी तरह साध के प्रयोग करना ही साधना है। और अगर हम ये सोचते रह गए, अपने पास ये नहीं, अपने पास वो नहीं, अपने पास, और केवल निराशावाद के शिकार बन गए, तो जो अपने पास शक्ति और सामर्थ्य है उसका भी हम सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दृढ़ता। एंड देयर फॉर वॉट एवर एसेट्स वी हैव टू यूज इट टू द फुल। और वो कह रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग करके इनको बचाना आवश्यक है, मेरा, मुझे आवश्यक है। तो अगर आप कहते हो कि हाँ, मुझे तो प्रचार करना आता नहीं, मेरी फिलॉसफी इतनी ठीक नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, अरे लेकिन माया बद्ध जीवों के हृदय के अंदर बैठे कृष्ण भक्ति का विनाश कर रही है तलवार लेकर, और वसुदेव बन के अगर आप जाकर उनके उस भक्ति को नहीं बचाओगे जो कि देवकी भक्ति का प्रतीक है, तो तो भगवान ने हमें जो कोई भी सीमित सामर्थ्य शक्ति दिया है उसका प्रयोग करना है प्रचार कार्य में, लोगों की भक्ति को बचाने के लिए, इस कलयुग के नाना प्रकार के नोकीले अस्त्र शस्त्र के धार के अंतर्गत हनन होने से बचाने के लिए प्रयत्न करना है। ये नहीं सोच रहे हम अकेले क्या करेंगे, न बजट है, न गाड़ी है, न ये है, न वो है, कैसे करेंगे। नहीं, अगर इच्छा प्रबल है, उस बलशाली इच्छा के आधार पर यह होता। तीसरा, वसुदेव जी कहते हैं कि हाँ, अगर मैं ये सोचूं कि मैं अभी करूं क्या, तो तभी बुद्धि का प्रयोग करने लगते तो एक आइडिया आता है। कहते देवकी को बचाना है ना, तो क्यों ना मैं अपना पुत्र जो पैदा होगा वो कंस को अभी से प्रॉमिस कर दूं तो शायद वो मान जाए। फिर तुरंत अंतरात्मा अंदर से आवाज करते, अरे अपने नवजात अबोध शिशु को हत्यारे के हाथ में देने का क्या अधिकार है तुम्हारा, जो बच्चा कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकता। तो बोलते ओह, हो सकता है मेरे पुत्र पैदा ही ना हो भाग्य से, दूसरा हो सकता है मेरे पुत्र पैदा हो उसके पहले कंस का कहीं एक्सीडेंट हो जाए वो मर जाए भाग्य से, तीसरा हो सकता है मेरे पुत्र पैदा हो लेकिन पैदा होने के बाद वो इतने बलशाली हो जाए कि कंस को ही मार दे, क्योंकि आकाशवाणी ने भी कहा था। अर्थात भाग्य और दैव ये बड़ा शक्तिशाली है, और इतने सारे संभावनाएं भविष्य में हो सकती हैं उसके बारे में सोच सोचकर माथा घूम रहा है, इसलिए अभी मैं केवल वर्तमान के ऊपर ध्यान देता हूं। वर्तमान में क्या है, देवकी को बचाना है। मैं ज्यादा दिमाग लगाऊंगा तो और कंफ्यूज हो रहा हूं, इसलिए अभी केवल इतना फोकस करता हूं कि देवकी को कैसे बचाएं, क्योंकि देखा गया है कि मार्कंडेय, अजामिल, सत्यव्रत इत्यादि मृत्यु से बचने का प्रयास नहीं किए लेकिन उनको बचा लिया गया। अजामिल ने खुद कुछ बड़ा प्लान नहीं बनाया था लेकिन केवल नारायण नारायण बोला बच गए, और हिरण्यकश्यपु ने डिटेल प्लान बनाया मृत्यु से बचने के लिए, वो मर गया। तो इसलिए भविष्य में कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा वो तो दूर की बात है, पहले देवकी को तो बचाऊं। इसीलिए वर्तमान पे ध्यान देना आवश्यक है। कभी कभी भविष्य की चिंताएं हमें इतना चिंतित करती हैं कि हम वर्तमान के चिंतन से पूरी तरह दूर हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो भाई, अब इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, इनको बचाने के लिए अपने पुत्र को हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एवं विमृश्यतम पापम यावतात्मानि दर्शनम पूजयानास वै शौरी बहुमान पुरःसरम। एवं विमृश्य, ऐसा विचार करके, तम पापम, ऐसे पापी कंस को, यावत आत्मनि दर्शनम, और जहां तक उनकी बुद्धि की सीमा थी, पूजयाम आसवै शौरी, बड़े विनम्रता पूर्वक और सम्मान पूर्वक, बहुमान पुरःसरम, सम्मान भरे शब्दों के साथ उन्होंने ये व्यक्त किया, अर्थात शक्ति का प्रदर्शन किया। उनकी शक्ति कहाँ थी, उनकी बुद्धि में उस समय। प्रसन्न वदनाम भोजौ नृशंसम निरपत्रपम मनसा दुयमानेन विहसम इदम अब्रवीत। अंदर उनका हृदय देवकी के निराशाजनक और बहुत बुरी तरह निस्सहाय भाव से रुदन करते हुए अवस्था को देखकर उनका कलेजा फट रहा था, भय से अभिभूत था, चिंता के सागर से भरा हुआ था। लेकिन बाह्य रूप से कंस के सामने वो निश्चिंत रहने का आडंबर रचाते हुए पूरे आत्मविश्वास भरे मुख पर मुस्कान छटाते हुए कहते हैं, प्रसन्न वदनाम भोजो नृशंसम, बड़ा ही क्रूर कंस, निरपत्रपम, जो कि निर्लज था, विहसन इदम अब्रवीत। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं हाँ, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि कृष्ण सर्वशक्तिशाली हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया और रथ के पीछे बैठकर गांजा फूंक कर कृष्ण को बोले तुम ही रथ चलाओ, तुम ही सर्वशक्तिशाली हो, विराट रूप में इतने लोगों को मार दिया तो फिर 18 दिन की क्या आवश्यकता है, क्षण भर में सबको निगल जाओ, खत्म करो। हाँ, कृष्ण सर्वशक्तिशाली हैं, लेकिन हमें भी अपना प्रयत्न करना है। तो इसलिए वसुदेव अंदर से तड़प रहे थे, बाहर से मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जब तक वो आत्मविश्वास प्रदर्शन नहीं करते, कंस वशीभूत नहीं होते, अर्थात अंतिम क्षण तक सेवा करने के लिए तत्पर थे वसुदेव जी। और इसलिए कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, एतार गाढ़ प्रेम लोके देखाई ते, गोपाल तारे आज्ञा दिला चंदन आनिते। इसलिए गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी को ये आज्ञा दी चंदन लाने के लिए, परीक्षा करी ते गोपाल कोइला आज्ञा दान, परीक्षा करिया शेषे होइला दयावान। तो ये परीक्षा जो दी उन्होंने, वो इसलिए जिससे कि लोगों के समक्ष उनके प्रेम की स्पष्टता प्रकट हो सके। तो जब हमारे जीवन में परिस्थिति आए, विकट परिस्थिति, चुनौतियां आए, वो उबलते हुए पानी की तरह है। उबलते हुए पानी में आलू को डालोगे तो फट जाएगा। उसी प्रकार कई लोग होते हैं जो ऐसी परिस्थिति में भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। उसी उबलते हुए पानी में अगर रुई डालो तो वो बिल्कुल कड़क हो जाता है। उसी प्रकार कई लोग विपरीत परिस्थिति में या अपने अपेक्षा के विपरीत कोई निर्णय सुनने के बाद पूरा अपने आप को खींच लेते हैं और बंध जाते हैं, है ना, कछुए की तरह। और तीसरा, जो ऐसे उबलते हुए पानी में अगर आप जड़ी बूटी डालो तो वो जड़ी बूटी उस उबलते हुए पानी के ताप को लेकर उसी सामान्य पानी को, जल को, वो औषधि में परिवर्तित कर देता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत और इन सभी ग्रंथों के श्रवण और कृष्ण कथा इत्यादि सुनने का मूल तात्पर्य पर्याय क्या है कि भले हमारे पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक कई कई समस्याएं जीवन में वर्तमान में हो सकती हैं, लेकिन हम लोगों के जीवन की गुणवत्ता इसके ऊपर निर्भर है कि किस आत्मविश्वास और शक्ति के साथ हम उस विपत्ति को संपत्ति के रूप में परिवर्तित करने के लिए दृढ़ संकल्पबद्ध हों। महाविपत्तौ संसारे यः स्मरेत मधुसूदन विपत्तौ तस्य संपत्ति भवेत इत्याह शंकर। जो महान विपत्ति के समय, जैसे वसुदेव के जीवन में विपत्ति थी, लेकिन वो संकल्पबद्ध थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, अंत तक प्रयत्न करने का प्रयास हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन हम प्रयत्न करते रहेंगे। 50ों बार लड़खड़ा के गिरेंगे, लेकिन उठना नहीं छोड़ेंगे। 50ों बार लात खाएंगे, लेकिन फिर भी सीना उठाकर हम भगवान की सेवा करना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो कहते हैं, महाविपत्तौ संसारे, महान विपत्ति के समय जो मधुसूदन भगवान का स्मरण करे, विपत्तौ तस्य संपत्ति, वही विपत्ति उसकी संपत्ति बन जाती है। और इसलिए हमें क्या करना है ऐसी परिस्थिति को परिवर्तित करने के लिए, सबसे पहले हमें, वी हैव टू एडजस्ट अवर एक्सपेक्टेशन इन कैलेमिटी, अर्थात अपने अपेक्षाओं को कुछ परिवर्तित करना है, जैसे परीक्षित महाराज ने परिवर्तित किया। दूसरा, वी हैव टू एक्सेप्ट अवर सिचुएशन, जैसे परीक्षित महाराज ने स्वीकार किया, हाँ अब 7 दिन में मृत्यु आने वाली है, अब इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, चलो चारों तरफ भक्तों को हम एकत्रित करें। और फिर तीसरा, एस्पायर फॉर द कनेक्शन, अर्थात कैसे हम भगवान के साथ जुड़ सकें, सो इन अ कैलामिटी वी शुड हैव द एबिलिटी टू एडजस्ट, टू एक्सेप्ट एंड टू एस्पायर इन द राइट वे. ये सारे भक्ति के पीछे यही मूल सिद्धांत है जिसके माध्यम से हम लोग ये परिवर्तन ला सकते हैं. तो इस प्रकार ऐसी परिस्थिति में जब वसुदेव जी कंस के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि भाई आपको तो पुत्र से भय है, आकाशवाणी हुई थी कि आठवां पुत्र मारेगा, ऐसा तो नहीं कहा कि देव की तलवार चलाएगी, ऐसा तो नहीं कहा कि देव की बाण चलाएगी, तो क्यों चिंता करती हो? जब पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण है तो हम पुत्र ला कर देंगे, उसमें क्या है कि नहीं? पहला दूसरा तीसरा हर एक को हम लेके आएंगे, दे देंगे आपके पास, फिर क्या भय, इसको क्यों मारते हो? तो ये जो दूसरा अस्त्र चलाया वो चल गया और कंस मान गया. और कंस ने कहा ठीक है, हम आपको अभी छोड़ देते हैं, जाने देते हैं. इस प्रकार कंस जो है वसुदेव जी की बातों में आ गए और उनकी बातों को उन्होंने स्वीकार कर लिया. और तत्पश्चात वसुदेव जी और देवकी को बंदी बना लिया और फिर उनका जो पहला पुत्र से लेकर आगे जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म इत्यादि हुआ, इसके विषय में चर्चा कल के जन्माष्टमी के मूल कथा में आप लोग सभी सुनिए, क्योंकि जन्माष्टमी कल है, अगर आज ही प्रकट कर दिए तो फिर कल सब लोग फीस्ट मांगेंगे. तो फिर हम यहाँ कथा के इसी पड़ाव पर विराम देते हैं और विशेष रूप से वसुदेव जी के इस आशावादी चरित्र के ऊपर स्मरण करते हुए, मनन करते हुए, वसुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि आप इतने बड़े बड़े जोखिम उठाकर भी आशावादी बने रहे. हम लोग के जीवन में दो चार फूंक कोई मारता है, फू, उसी के अंतर्गत हम लोग एक पत्ते की तरह डगमगाने लगते हैं. तो कृपा करके आप हमें आशीर्वाद दीजिए जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर कि आपने सफलतापूर्वक कृष्ण को अपने जीवन में प्रकट करने पर बाध्य किया अपने आशावादी चरित्र से. हमारे हृदय के अंदर भी ऐसा आशावादी चरित्र बना रहे जिससे कि हर परिस्थिति में निर्भीक रूप से हम हर विपरीत परिस्थिति में जूझते रहें, प्रयत्न करते रहें, सेवा करते रहें, आशा अमर रहे. इस प्रार्थना और संकल्पना के साथ जन्माष्टमी की पूर्व संध्या के इस कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ. पूरे अलग अलग जितने भी सेंटर्स आज यहाँ पर उपस्थित रहे, जिस कैमरा से भी आप देख रहे हो, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय.